दिन भर 21 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपसी सहमति से सुलझाएं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दा।
कि मैं तो इसको बहुत ही वेलकम करता हूं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश खुद इस पर कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगभग 1949 से कोर्ट में पड़नी है, 67 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का।
आपकी मुलाकात कराएंगे योगी मंत्रिमंडल के एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहसिन रजा से।
कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को पहले टिकट देना पसंद करेगी जो उस जगह काम कर रहा है, इसलिए हम बांटने की राजनीति या दिखाने के लिए नहीं, आपको अगर सबका।
और नैनीताल हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अपूर्व कृष्ण से। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ढहा दी गई मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाने के विवादास्पद मुद्दे पर कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुद्दे को संवेदनशील और भावुक बताते हुए कहा कि इसका हल अदालत के बाहर आपसी सहमति से निकाला जाना चाहिए। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक अभियानों में राम मंदिर बनाए जाने को काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया हुआ है। 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद को कट्टर हिंदू मतावलंबियों ने 1992 में ढहा दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को सजीव घोषित कर दिया है, जिसकी पर्यावरणवादी सतर्कता बरतते हुए स्वागत कर रहे हैं। इस कदम का मतलब है कि अब इन नदियों को इंसानों की ही तरह कानूनी दर्जा मिल जाएगा। हालांकि दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदूषण को रोकने वाले मौजूदा कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। पिछले सप्ताह न्यूजीलैंड में दुनिया में पहली बार एक नदी को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार दिया गया था। अमरीका ने मध्य पूर्व के 10 हवाई अड्डों से सीधे अमरीका जाने वाली उड़ानों में लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और गेम कंसोल के ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी यातायात अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला खुफिया जानकारियों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इनके तहत यात्री मोबाइल फोन से बड़ा कोई भी डिवाइस अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। हालांकि इन डिवाइसों को उड़ान के बैगेज स्टोर में ले जाने वाले सामानों में रखा जा सकेगा। एक हवाई सुरक्षा विशेषज्ञ जूलियन ब्रे ने कहा कि ऐसा लगता है ये कदम इन देशों में सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजामों को देखते हुए उठाया गया है। वे लोग मुख्य रूप से इस बात से चिंतित हैं कि इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता नहीं, और हालांकि वो कह रहे हैं कि ये एक सुरक्षा उपाय है, मगर वास्तव में ये चरमपंथी कृत्यों को रोकने की कोशिश है। हवाई सुरक्षा विशेषज्ञ जूलियन ब्रे के शब्द। सीरिया में विद्रोहियों और जिहादी गुटों ने पूर्वी दमिश्क में एक नया हमला शुरू किया है। दो दिन पहले भी उन्होंने हमले की कोशिश की थी, जिसे सरकारी सेनाओं ने नाकाम कर दिया था। बताया जा रहा है कि ताज़ा हमला एक बड़े कार हमले से शुरू हुआ, जिसके बाद गोले और गोलियों से हमले किए गए। जवाब में हवाई हमले भी किए गए। विद्रोहियों का कहना है कि रविवार को जिन इलाकों पर हमलों की जो कोशिश नाकाम हुई थी, वहां उन्होंने फिर से पकड़ बना ली है। इस बीच सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान द मिस्तुरा ने कहा है कि संघर्ष में शामिल सभी पक्षों ने गुरुवार को बातचीत के नए चक्र में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टूस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ के बचे हुए 27 देश 29 अप्रैल को बैठक करेंगे, जिसमें ब्रिटेन के संघ से बाहर निकलने की बातचीत को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ छोड़ने की प्रक्रिया को औपचारिक तौर पर शुरू करने की ब्रिटेन की योजना के एक महीने बाद आयोजित किया जा रहा है। बातचीत में हमारी मुख्य प्राथमिकता होगी कि जितना संभव हो उतनी स्पष्टता लाई जाए, हर नागरिक, हर कंपनी और हर सदस्य देश के लिए जिस पर ब्रेग्जिट का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टूस्क के शब्द। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महीने से भी अधिक अरसे में पहली बार बॉर्डर खोला गया है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रक और कोच आर पार जा रहे हैं। फरवरी में कई चरमपंथी हमलों के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया था। और थाईलैंड में पिगी बैंक नाम के उस समुद्री कछुए की मौत हो गई है, जिसने 1000 से भी ज्यादा सिक्के निगल लिए थे। इन्हें निकालने के लिए उसकी सर्जरी की गई थी। ये मादा कछुआ जिस तालाब में रहती थी, वहां आने वाले लोग तालाब में पैसे फेंका करते थे, जिन्हें वो निगलते जा रही थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आज अचानक भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो इस विवादित मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं यदि दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर सहमति बनाने को राजी हों। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की इस ताज़ा सलाह पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष आपस में मिलकर बात करके इस मुद्दे का समाधान निकालें। बाबरी मस्जिद एक्शन समिति ने अदालत के इस फैसले को स्वीकार किया है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि सलाह का स्वागत है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और संवेदनशील मामलों का हल आपसी बातचीत से हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी जरूरत पड़ी तो वो हाजिर होंगे। बाबरी मस्जिद एक्शन समिति के संयोजक जफर याब जिलानी इसका स्वागत करते हैं।
कि मैं तो इसको बहुत ही वेलकम करता हूं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश खुद इस पर कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगभग 1949 से कोर्ट में पेंडिंग है। 67 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से बड़ा कोई आदमी भारतवर्ष में नहीं है कि जिससे इंसाफ की उम्मीद की जा सके। अगर उन्होंने खुद ये बात कही है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अदालत की सलाह का स्वागत किया है।
मैं समझता हूं कि हम तो शुरू से तैयार हैं कि मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, परंतु मस्जिद को सरयू नदी के उस पार बननी चाहिए और ये जो जमीन है राम जन्मभूमि वो संपूर्ण रूप से राम मंदिर का होना चाहिए।
श्री स्वामी का ये प्रस्ताव नया नहीं है, लेकिन जफरयाब जिलानी के साथी और बाबरी मस्जिद एक्शन समिति के एक सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास कहते हैं कि बातचीत से दूसरे पक्ष का मतलब ये होता है कि हम सरेंडर कर दें।
बातचीत से मुराद एक ही है, बिकॉज वो आप तो उस जगह को छोड़ दीजिए और कहीं और जमीन ले लीजिए, या ये कि उससे दस्तदार हो जाइए, इसलिए कि इलाकों हिंदुओं से जुड़ा हुआ मसला है। भाई हमारा कहना ये है कि देखिए, हमने ये बात बहुत पहले भी कही है, कई बार कही है कि मस्जिद जो है ना वो किसी भी नाजायज जमीन पर मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। कोई ये साबित कर दे, अदालत में साबित कर दे, डॉक्यूमेंट से साबित कर दे कि वो जमीन वहाँ राम जन्मभूमि थी जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो अगर ये साबित हो जाता है बगैर किसी उसके, तो हम तो उसको वैसे ही सरेंडर कर देंगे।
जफरयाब जिलानी कहते हैं कि बातचीत कई बार हो चुकी है लेकिन नाकाम रही है।
शंकराचार्य के लेवल पर दो मरतबा एफर्ट हुई। 1986 में मौलाना अली मियां उनसे मिलने गए थे और उन्होंने खुद बुलाया था, दो मरतबा वो लोग मिलने गए और उसके बाद उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि भाई मुझ पर प्रेशर है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेवल पर दो मरतबा एफर्ट हुई। चंद्रशेखर साहब ने 3 चीफ मिनिस्टर्स को बीच में डाला, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, भरत सिंह शेखावत, तीनों ने दोनों पक्षों को बुलाकर कई महीने बातचीत की, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद नरसिम्हा राव के ज़माने में सुबोध कांत सहाय को इसका बनाया गया इंचार्ज, और फिर दोनों पक्ष बैठे और नतीजा हुआ कि उन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी। तो उसके बाद फिर शंकराचार्य जो आजकल हैं कांची कोर्ट के, वो मौलाना राबे साहब नदवी से मिलने लखनऊ आए और उनसे कहा राबे साहब से, तो राबे साहब ने कहा कि आप लिख कर हमें भेज दिए जो आपका प्रपोजल हो। उसके लिए राबे साहब ने पर्सनल बोर्ड की मीटिंग बुलाई, वर्किंग कमेटी की, यहीं लखनऊ नदवे में, और जब उनका खत खोला गया तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आप 3 मस्जिदें हमको दे दीजिए।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई सरकार में मुस्लिम समुदाय के अकेले मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि उनकी सरकार संविधान का पालन करेगी।
जो मामला न्याय संगत हो जाता है उस पर हमारा कहना यह है कि जब हमें न्याय संगत फैसला आएगा हम मंदिर बनाएंगे और उस पर हम लोग जो है कोई ज्यादा नहीं, हाँ हमारा वो आस्था का मुद्दा है और उससे हम हटे नहीं।
कुछ सप्ताह पहले उस समय के सांसद और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी।
मुझे लगता है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो संविधान के दायरे में रह करके।
अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर ये कानूनी लड़ाई 1949 से चली आ रही है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने बहुमत से ये फैसला दिया था कि जिस जगह पर राम की मूर्ति स्थापित है वहाँ मूर्ति ही रहेगी और शेष जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया गया था। कासिम रसूल इलियास कहते हैं कि अदालत का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए, आस्था के हिसाब से नहीं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
हमारे साथी विनीत खरे ने वरिष्ठ पत्रकार राकेश भटनागर से संपर्क किया जो इस पूरे मामले को कई सालों से कवर करते आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर उनकी राय मांगी।
मैं ये इसको देखता हूँ कि एक सजेशन दिया है उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत लंबा चल गया है, हर बार यही विषय उठता है, कितनी बार इसी में दंगे भी हुए, बहुत कुछ हुआ, नुकसान हुआ और उसको करना चाहिए। तो उन्होंने जाते जाते मेरे ख्याल से कुछ महीने बाद ही शायद रिटायर हो जाएंगे ये, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो अगर मेरे से कुछ उम्मीद करते हो तो मैं अपना मीडिएट कर देता हूँ। पर मेरा प्रश्न कुछ और है, ये उनकी सजेशन उनकी ऑफर तो किसी को भी बुरी नहीं लगनी चाहिए कि हर आदमी कोई ऑफर कर रहा है कि किसी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2010 की जजमेंट थी उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में तब से 7 साल हो गए वहीं पर है, अगर उसका एक स्पेशल बेंच बन जाए और सिर्फ फास्ट ट्रैक मोड में डालें सुप्रीम कोर्ट में और उन जजेस को रखें कि जो कि इस डिस्प्यूट में कभी रहे नहीं है एज ए लॉयर या हाईकोर्ट जज, तो उनको रख के इसको सॉर्ट आउट जब तक नहीं करेंगे वो तो ये हमेशा तलवार लटकी रहेगी। और जब ये कहते हैं कि ये सेंटीमेंट्स का सवाल है, और मुझे याद है कि अयोध्या की हियरिंग में जस्टिस चीफ जस्टिस वेंकट चलैया के सामने कहा गया था, ये विश्व हिंदू परिषद के लॉयर थे कौन थे, कि इसमें तो मिलियंस ऑफ पीपल वांट टेम्पल, तो चीफ जस्टिस ने तब मुझे याद है कहा था कि पर मिलियंस अदर्स मिलियन डोंट वांट टेम्पल, तो उन्होंने कहा कौन से मिलियन की बात कर रहे हो तुम। तो ये सारी चीजें हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये अपील जो थी खुली थी जब इन्होंने जजमेंट इसकी जो लैंड एक्विजिशन का मामला था उसको वो किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये सिविल इसको सिविल डिस्प्यूट है, इसको ऑर्डिनरी सिविल डिस्प्यूट की तरह ही देखा जाए।
लेकिन एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि जब इतने सालों की बातचीत का कोई असर नहीं हुआ, कोई फल नहीं आया, तो इस तो फिर एक जो नई बातचीत की पहल अगर होती भी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा?
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक और एकेडमिक डिस्कशन होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बात वहीं के वहीं जाके रुक जाएगी। तो इससे पहले ये है कि एक स्लेट क्लियर कर दो, तुम जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है, 3 जजेस ने जजमेंट दी है, 3 जजेस ने अपने अपने ढंग से एक यूनानिमस जजमेंट थी 8,000 पेज की, माइंड यू मेरे ख्याल से 8,000 या 10,000 पेज थे वो, और उसमें उन्होंने एक तरह से इसका बंटवारा किया है इसके ऊपर, इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें ठीक है टाइम लगेगा, अपील तो सुने तो सही, इसको तो रिजोल्व करना पड़ेगा ना जी आपको पहले
जी।
जो अपील्स पेंडिंग पड़ी है उसका क्या हुआ, एक रास्ता ये निकाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस चाह रहे हैं कि पार्टी इसको अलग अलग बुलाएं और अलग अलग उनसे बात करें और कहें कि आप अपने अपनी जो आपने चैलेंज करा है इस ऑर्डर, क्योंकि दोनों पार्टी ने चैलेंज किया था इसको, दोनों ने इस जजमेंट को चैलेंज किया था।
राजनीतिक क्या हम लिंक कोई लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में यूपी में चुनाव हुए, भाजपा जीती वहां पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं।
राम मंदिर का जहां तक सवाल है, राम मंदिर जब तक ये डिस्प्यूट जिंदा रहेगा तो बीजेपी की पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी। जिस दिन राम टेंपल बन गया तो अब उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा इमोशनल इशू रहा मेरे पास? और दूसरा जो उनके अपोज है अगर वो उसको अपोज करते रहेंगे तभी वो सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं। इस बार इन्होंने कहा है और आदित्यनाथ आए तो इनका इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था जब तोड़ने से नहीं हमें कोई रोक सका तो बनाने से कौन रोक सकता।
वरिष्ठ पत्रकार राकेश भटनागर से बात कर रहे थे विनीत खरे।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,885, 7,600, 9,740, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
नैनीताल हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया है, यानी इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। ऐसे में आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा और व्यक्ति को जेल भी संभव है। करीब एक सप्ताह पहले ही न्यूजीलैंड की एक नदी को भी वहां की एक अदालत से यही दर्जा मिला था। अदालत ने अपने फैसले में वही नजीर ली, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी गंगा दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से भी एक है और इसकी सफाई के लिए दशकों से केंद्र सरकार के बड़े अभियान चलते रहे हैं। देहरादून से शिव जोशी।
अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील एमसी पंत ने गंगा यमुना की खराब दशा बताते हुए न्यूजीलैंड की वैन गेनोई नदी को जीवित प्राणी का दर्जा देने का हवाला दिया था। उनकी दलील पर ही कोर्ट ने ये निर्देश दिए। पंत ने बताया कि कोर्ट के पास किसी को भी वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देने का अधिकार है। कोर्ट का फैसला सुनने में अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे अदालत की मंशा और फैसले के महत्व के बारे में बताया मशहूर पर्यावरणविद और पहाड़ी संस्कृति और भूगोल के विशेषज्ञ शेखर पाठक ने।
लोगों को ये अव्यवहारिक लग रहा होगा कि गंगा और यमुना को जब एक परसोना वाला जो एक स्टेटस मिल गया तो, लेकिन वो अपनी ओर से बोल नहीं सकती है नदियां, तो उसमें जो है जो स्टेट की जो जिम्मेदारी होगी पूरी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जिसको कहेंगे कि सोसाइटी के लिए और विकास के लिए और विज्ञान सम्मतता के लिए, उसमें इनको ये दिया गया जैसे कि किसी मूर्ति को दे दिया जाता है, जैसे कि किसी मंदिर को दे दिया जाता है, जैसे किसी चर्च को दे दिया जाता है।
असल में गंगा यमुना का मुद्दा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित जनहित याचिका के बीच आया है। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने निर्देश जारी किए। ये याचिका देहरादून निवासी मोहम्मद सलीम ने दायर की थी। गंगा यमुना को दिए गए अधिकार का उपयोग 3 सदस्यों वाली समिति करेगी, यानी ये समिति इन नदियों को क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित सभी मुकदमों की पैरवी करेगी। इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और नमामि गंगे प्राधिकरण के महानिदेशक शामिल किए गए हैं। एक बार फिर शेखर पाठक।
बड़ी मजेदार बात है कि बार बार इसमें गंगा को हिंदुओं की या यमुना को हिंदुओं की नदी वगैरह वगैरह कहा गया है, लेकिन वो पूरे भारतीय समाज की नदी है, उसको धर्मों में उस तरीके से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसने रिट दायर की वो मोहम्मद अजीम साहब है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, और वह रिट मूलतः शुरू हुई थी कि जो गंगा नहर बन है उसके ऊपर से जो इंक्रोचमेंट हुआ है उस पर एक तरीके से शुरू हुआ है, तो उस पर भी बड़े क्लियर कट निर्देश जो है कोर्ट ने दिए।
दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा दुनिया की सबसे गंदी नदियों में भी एक है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। गंगा की सफाई के लिए पिछले ही महीने केंद्र ने 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके तहत शामिल राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और दिल्ली। इन 20 परियोजनाओं में से 13 उत्तराखंड में हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा को अभी अपनी वास्तविक मुक्ति की तलाश है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहसिन रजा को शपथ दिलाई गई है। मोहसिन उत्तर प्रदेश के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। मोहसिन रजा राजनीति में आने से पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे। लखनऊ गए हमारे साथी सलमान रावी ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि आप क्रिकेट और राजनीति के मैदान में क्या समानता देखते हैं।
दोनों की सिमिलरिटी ये है कि दोनों में टीम गेम है। जो क्रिकेट था वो भी मैं राष्ट्र के लिए खेलना चाह रहा था और राष्ट्र के लिए खेल रहा था, और यहाँ पर भी जो मैं आया हूँ एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और लिहाजा यहाँ भी मुझे राष्ट्र का ही काम करना है, राष्ट्र के लोगों का काम करना है, राष्ट्र के निर्माण का काम करना है।
अब जो ये कैबिनेट में पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, पहले तो सरकार बनाने में काफी था कि साहब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, 300 से ज्यादा मतलब 3/4 बहुमत आप लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी जिन राज्यों में कम सीटें थी बीजेपी को वहां तो सरकारें बन गई, उत्तर प्रदेश में जहां 3/4 मेजोरिटी आई वहां इतना समय लग गया।
देखिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सूबा है और यहां पर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां से वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जिस तरह से मोदी जी के ऊपर भरोसा और विश्वास जताया है देश की जनता ने, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी पर ही विश्वास जताते हुए इतना प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब यहां पर सारी चीजों को देखना है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश की, उसको हमने फौरन ही, हमारी सरकार ने ओथ नहीं ली, योगी जी ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले ही आप देखिए जितने पहले के मंत्री भ्रष्ट थे या अपराधी थे उनको जेल भेजना पुलिस ने शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है सरकार की कि सबका साथ सबका विकास करने की सरकार है।
एक वाहिद मुसलमान चेहरा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, क्या ये आलोचनाएं हो रही थी इस वजह से रखा गया, क्योंकि टिकट तो किसी को नहीं दिया?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टिकट के लायक। अब देखिए हुआ क्या कि जो अपोजिशन है उस अपोजिशन ने इतना ज्यादा लोगों को गुमराह किया हुआ है। मायावती जी ने
100 टिकट बांट दिए मुसलमानों को, अखिलेश यादव ने जो है 80-90 टिकट बांट दिए, कांग्रेस ने बांट दिए, तो बांटने की राजनीति तो इन्होंने करी ना हमको अलग करने की बात। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई था ही नहीं, टिकट कोई मांग रहा था, जो लोग मांग भी रहे थे, तो जाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को पहले टिकट देना पसंद करेगी जो उस जगह काम कर रहा है। इसलिए हम बांटने की राजनीति या दिखाने के लिए नहीं, आपको अगर सबका साथ देखना है, एक मामूली से कार्यकर्ता जो आपके सामने मोहसिन रजा खड़े हैं, आप सोचिए और समझिए कि आखिर आज आपके सामने मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया और कि नहीं दिया, एक मामूली से कार्यकर्ता, ना मैं MLC हूँ ना मैं विधायक हूँ।
रजा साहब एक संतोष हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि एक क्रिकेटर।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं कल ही बात कर रहा था अपने उप मुख्यमंत्री से भी, मैंने बात की और मुख्यमंत्री योगी जी से बात की, मैंने कहा कि सर ठीक है माइनॉरिटीज के सिवा मुझे खेल में बहुत ज्यादा हमारा वो है और मैं खेल में डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के तमाम युवा जो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं पहले, मैं उनको सबको यहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का, ये सारी चीजों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही अगर हमको जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम उस पर चौमुखी विकास करेंगे स्पोर्ट्स का।
आदित्यनाथ योगी के बारे में आपके निजी विचार क्या है, क्योंकि साहब ये कहा गया, एक इंप्रेशन था कि कट्टर हिंदुत्व की जो एक छवि उनकी बनी रही, और मुसलमान किस तरह से देखते हो, खासतौर पे आप जो है वो क्या सोचते हैं उनके बारे में?
देखिए वो एक बहुत अच्छे शासक हैं, बहुत अनुशासन में रहने वाले, जो कठोर प्रशासक कर रहा होगा, जो कड़ा प्रशासक होगा, जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने पूरा दुरुस्त कर दिया हिंदुस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी, एकदम आप देखिए काम करती है। जब प्रधानमंत्री 9 बजे दफ्तर पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी को पहले पहुंचना होगा, ऐसे ही योगी जी काम करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के चुने हुए, प्रधानमंत्री जी की पसंद है वो, इसलिए उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक दिन लोग ऐसे ही लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखेंगे योगी जी को, जैसे आज दुनिया में लोग प्रधानमंत्री को हमारे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को।
ये थे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहसिन रजा।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में दावा किया गया कि सऊदी हुकूमत ने हमलावरों को आर्थिक मदद समेत कई तरह की मदद की थी। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों को यात्री विमान टकराकर तबाह कर दिया गया था, जिनमें करीब 3,000 लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सऊदी अरब के खिलाफ इस मुकदमे में 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों में मारे गए लोगों में से 800 के परिवार वाले शामिल हैं। मैनहट्टन की केंद्रीय अदालत में दायर इस मुकदमे में दावा किया गया है कि 11 सितंबर के हमलों के लिए सऊदी अरब की हुकूमत जिम्मेदार है और इस सिलसिले में अब मुआवजे की मांग भी की जा रही है। 11 सितंबर के हमलों में शामिल 19 हमलावरों में से 15 सऊदी नागरिक थे। अदालत में पेश किए गए दस्तावेज में विस्तार से सऊदी अरब के कुछ अधिकारियों के कथित तौर पर हमलावरों की मदद करने का जिक्र किया गया है। न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म क्राइनलर एंड क्राइनलर ने यह मुकदमा दायर किया है। वकील जिम क्राइनलर कहते हैं,
Not all of them, but there were certainly a segment of the royal family and government officials that participated in the funding of Al-Qaeda.
सारा सऊदी शाही खानदान तो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन शाही खानदान के कुछ सदस्य और हुकूमत के कुछ अधिकारी अलकायदा को आर्थिक मदद देने में शामिल थे। ये थे वकील जिम क्रैंडलर के शब्द। मुकदमे के दस्तावेजों में दो हमलावर सलीम अल हजमी और खालिद अलमिदार को अमरीका में सऊदी दूतावास के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर मदद देने का विस्तार से जिक्र है। दस्तावेज में कहा गया है कि उन हमलावरों को अमरीका में रिहाइश फराहम करने, अंग्रेजी जबान सीखने में और क्रेडिट कार्ड हासिल करने में मदद के साथ साथ रकम भी दी गई थी। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सऊदी शाही खानदान को यह बखूबी मालूम था कि अल हरमैन इस्लामिक फाउंडेशन जैसे सऊदी चैरिटी संगठनों के जरिए आतंकी संगठन अलकायदा को आर्थिक मदद भेजी जा रही थी, और इस सिलसिले में दस्तावेज में तफसील से जिक्र किया गया है कि किस तरह दहशतगर्दों की आर्थिक मदद को छिपाने की कोशिश की गई थी। वकील जिम क्रैंडलर कहते हैं, सऊदी चैरिटीज पर सऊदी हुकूमत के अधिकारियों को नजर रखने के लिए तैनात किया जाता था और उन्हें बखूबी मालूम था कि इनके जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप्स और टेरर सेल्स को आर्थिक मदद भेजी जा रही है। वकील के शब्द। लेकिन इस मुकदमे में ये जिक्र नहीं है कि सऊदी हुकूमत से मुआवजे की शक्ल में कितनी रकम की मांग की जा रही है। पिछले साल सितंबर माह में अमेरिका की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमे करने से संबंधित कानून को मंजूरी दी थी। ये मुकदमा उस कानून के तहत दायर किया जा सका है जिसमें 11 सितंबर के आतंकी हमलों में मरने वालों के परिवारों को सऊदी अरब की हुकूमत पर मुकदमे करने का हक दिया गया है। अमरीका का सहयोगी सऊदी अरब 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों में शामिल होने से इनकार करता रहा है, लेकिन कई अमरीकी सांसद सऊदी अरब पर चरमपंथियों की आर्थिक मदद करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा कानून बनाया गया तो वो अमरीकी बॉन्ड बेच देगा, यानी अरबों डॉलर अमरीकी अर्थव्यवस्था से निकाल लेगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
राजस्थान के जयपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति का होटल को मांस के शक में सील करने और दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद भारी विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर गोरक्षक दल ने रविवार की रात हंगामा किया था। पुलिस के अनुसार जिसे बीफ यानी गोमांस समझा गया वो किसी दूसरे मांसाहार का अंश निकला। जयपुर से नारायण पारेट की रिपोर्ट।
सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। होटल के कर्मचारी ने जैसे ही रविवार की रात कूड़ेदान में कचरा फेंका, गोरक्षकों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। होटल पर हंगामे और नारेबाजी के बाद पुलिस ने होटल के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। नगर निगम हरकत में आया और होटल को लाइसेंस नियम के तहत सील कर दिया गया। तब से यह होटल बंद है। गोरक्षक दल का आरोप है कि होटल में बीफ यानी गोमांस परोसा जा रहा था। होटल मालिक ने इस आरोप को गलत बताया है। पुलिस अधिकारी मनफूल सिंह ने बीबीसी से कहा, इसमें बीफ या गोमांस जैसी कोई बात नहीं थी। होटल मालिक नईम रब्बानी ने गोरक्षक दल के खिलाफ पुलिस में परिवाद दिया है। वे घटना के बारे में कहते हैं
कि ये 100% नाइंसाफी है। जब वहाँ लड़का मेरा कचरा डालने के लिए गया, साध्वी जी ये कहती है कि वो बीफ है, कैसे डिसाइड इस बात को कर लिया कि वो बीफ है, जबकि खुद उनको मालूम ही नहीं है। और उसके बाद में अपने लोगों को बुला करके होटल का घेराव करना और पूरी होटल के जो रूम्स लगे हुए थे मेरे 20 रूम उन सबको जबरदस्ती चेकआउट कराना और पूरी होटल को उन्होंने चेकआउट करा दिया और बिना सोचे समझे होटल को सील कर दिया गया। बताइए आप, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। तो आज हमने उनके खिलाफ काउंटर एफ आई आर दर्ज करा दी है। मतलब पुलिस की तरफ से हमें भी कोई परेशानी नहीं है। लोग उस मोहल्ले के नहीं थे, बाहर से आकर के उन्होंने किया सारा काम।
इस घटना पर मानवाधिकार संगठनों, अल्पसंख्यक समुदाय और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया है। वे गोरक्षक दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस विरोध में शामिल निशा सिद्धू कहती है,
लोग डरे हैं, खास तौर पे माइनॉरिटी का जो सेक्शन है वो डर में है, भय में है, दबाव में है। तो हम उस दबाव को, उस भय को खत्म करना चाहेंगे। हम उनको बहुत भरोसे के साथ ये बात कहते हैं, हम सब साथ हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम सब सड़कों पे आएंगे।
कभी तल्ख जवान को लेकर तो कभी ऊंची आवाज ने विवाद खड़ा किया, लेकिन यह विवाद जायके को लेकर सामने आया है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस विवाद का वो कैसे निराकरण करे। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, सुमिरन प्रीत कौर के साथ।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने यहाँ इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया, वही असर हुआ उनकी रैंकिंग पर। 10वें स्थान से अब वो 6ठे स्थान पर आ गए हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में उन्होंने राफेल नदाल, डोमिनिक थीम और मारिन चिलिच को पीछे छोड़ दिया है। स्विट्जरलैंड के पूर्व टेनिस खिलाड़ी क्लॉडियो मेजार्डी कहते हैं कि रॉजर फेडरर तब तक कोर्ट पर हैं जब तक वो अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं।
He knows that the body will decide.
ये रॉजर फेडरर का शरीर बताएगा कि उन्हें कब गेम को अलविदा कहना है, वो 3 साल हो या 5 साल। उन्होंने अभी कुछ नौजवानों से बात करते हुए कहा कि वो अगले 5 साल खेल सकते हैं। आप टेनिस कोर्ट में तब तक हैं जब तक आप अच्छा खेल रहे हैं, फिजिकली फिट हैं और रोजर फेडरर अच्छा खेल रहे हैं, साथ ही अपना गेम भी इंजॉय कर रहे हैं।
टेनिस रैंकिंग की अगर बात की जाए तो सबसे आगे हैं ग्रेट ब्रिटेन के एंडी मरे, फिर सर्बिया के नोवाक जोकोविच, फिर स्टानिस्लास वावरिंका, फिर जापान के निशिकोरी, फिर मिलोस राउनिक और फिर रॉजर फेडरर। अब क्रिकेट रैंकिंग की बात करते हैं। रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला हुआ वो बेशक ड्रॉ रहा, लेकिन रविंद्र जडेजा की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की रैंकिंग में टेस्ट बोलर्स में सबसे आगे हैं रविंद्र जडेजा। रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए चेतेश्वर पुजारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस श्रृंखला का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच होगा 25 मार्च से धर्मशाला में। अब बात डोमेस्टिक क्रिकेट की। 25 मार्च से विशाखापट्टनम में शुरू होगी देवधर ट्रॉफी। 29 मार्च को खेला जाएगा इस सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच। इस मुकाबले में दो टीम हिस्सा ले रहे हैं, इंडिया ब्लू और इंडिया रेड। इंडिया ब्लू के कप्तान हैं रोहित शर्मा, वहीं इंडिया रेड के कप्तान हैं पार्थिव पटेल। जाने से पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने भारत के अंकुर खन्ना को अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है। वे मार्च के अंत में अपना कार्यभार संभालेंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर बनाए जाने के मुद्दे को संवेदनशील और भावुक बताते हुए कहा है कि इसका हल अदालत के बाहर आपसी सहमति से निकाला जाना चाहिए। अमेरिका ने मध्य पूर्व के 10 हवाई अड्डों से सीधे अमेरिका जाने वाली उड़ानों में लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और गेम कॉन्सोल ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।